वेद और वंश राजावत फैमिली ने नव्यांशी और अरमान की सगाई के सिलसिले में बात करने के लिए गए थे। राजावत फैमिली के इंसिस्ट करने पर उन्होंने वहां पर डिनर किया। वंश को राजावत फैमिली पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऊपर से गीतिका ने उन्हें ये तक बताया था कि लीला ने खुद अपने हाथों से वेद के लिए डिज़र्ट बनाया था। गलती से उसके मुँह से वेद के डायबिटिक होने की बात निकल गई थी। वेद और वंश अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत रहे थे। वेद ने जब लीला का बनाया हुआ डिज़र्ट खाया तब उसने महसूस किया कि उसमें कुछ नहीं था, लेकिन जब डिनर के बाद उसने पानी पिया तो उसका एक सिप लेते ही वेद को एहसास हो गया था कि उसमें ग्लूकोज मिला था। वो वेद के लिए किसी जहर से कम नहीं था। वो अगर पूरा ग्लास पीता तो शुगर लेवल बढ़ने की वजह से उसकी मौत तक हो सकती थी। फिलहाल तो उसका एक घूंट ही वेद की तबीयत खराब करने के लिए काफ़ी था। उसने तुरंत ग्लास को खुद से अलग किया और लीला के चेहरे की तरफ देखा, जो काफ़ी सामान्य नज़र आ रही थी। फिर वेद की नज़र तेजिंदर की तरफ गई, जो होठों के कोनों पर एक छोटी सी तिरछी मुस्कुराहट के साथ चुनौती भरी निगाहों से वेद की तरफ देख रहा था। वेद को उसके हाव भाव देखते ही समझ आ गया था कि इसके पीछे तेजिंदर का हाथ था। सगाई के दिन मिलते हैं, उम्मीद है आज की खातिरदारी ने तुम्हें निराश नहीं किया होगा वेद, तेजिंदर ने मुस्कुराकर कहा। उसकी भौहें तनी हुई थीं। वेद ने बिना कुछ कहे हल्के से सिर हिला दिया था। कुछ भी कहकर या जताकर वो माहौल तो खराब नहीं करना चाहता था। ऊपर से वेद अभी कुछ रिएक्ट करता तो शायद नव्यांशी और अरमान का रिश्ता भी बिगड़ जाता। मिलते हैं, वेद ने धीमी आवाज में कहा। वो वंश के साथ वहां से जाने के लिए निकल गया था। वहीं जैसे ही उन्होंने राजावत फैमिली की दहलीज पार की, लीला ने गुस्से में तेजिंदर की तरफ देखा। तेजिंदर ने उसे अनदेखा किया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन लीला इस बात को जाने नहीं दे सकती थी। वो तेज कदमों से चलते हुए उसके पीछे जा रही थी। कमरे में जाते ही लीला तेजिंदर पर बिफर पड़ी थी। आपने मुझे कुछ करने क्यों नहीं दिया, और इतनी आसानी से आप उसकी बात भी मान गए? आपके कहने पर मैंने डिज़र्ट को बदल दिया था, वरना अच्छा मौका था उसकी जान लेने का। उसकी वजह से हमारे बेटे ने बहुत तकलीफें झेली हैं, क्या भूल गए हैं आप? लीला ने भारी आवाज में कहा। तेजिंदर ने अपनी मूछों को ताव दिया और फिर लीला की तरफ देखकर कहा, कुछ भी नहीं भूला हूँ और ना ही वेद सिंह चौहान को भूलने दूंगा। तुम्हारा प्लान काफी सीधा सा था। ऊपर से तुम जो करने जा रही थी उसके बारे में पूरे घर को खबर थी। कुछ सीखो उससे। उसके अगले कदम के बारे में उसकी परछाई तक को पता नहीं होता है। और किसने कहा कि हमारे घर आने के बावजूद मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया? मतलब क्या है आपका? लीला ने उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देखकर पूछा। मतलब बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। मेरे पीछे आओ, तेजिंदर ने जवाब दिया और लीला को अपने पीछे आने का इशारा करके अपने कमरे की बालकनी में आ गया था। लीला उसके पास में खड़ी हुई थी, जहां से वो देख पा रहे थे कि वेद वंश के साथ गाड़ी के पास पहुंच गया था। गाड़ी के पास आते ही वेद के कदम लड़खड़ाने लगे थे और उसने खुद को गिरने से बचाने के लिए वंश का हाथ पकड़ लिया था। अभी तो वो ठीक था, क्या उसे कुछ हुआ है? लीला ने जल्दी से तेजिंदर की तरफ देखकर पूछा। मैंने उसके पानी में ग्लूकोज मिलाने के लिए कहा था, जो उसके लिए किसी जहर से कम नहीं है। आज उसकी जान भले ही ना जाए, लेकिन तकलीफ तो उसे भी हुई होगी। इतनी आसानी से मैं उसे नहीं मरने देने वाला हूँ। जितनी तकलीफ और परेशानी उसने हमें दी है, उसे सूद समेत वापस लौटाऊंगा, तेजिंदर ने दांत पीछते हुए कहा। अब उसे वेद को और देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए तेजिंदर वापस कमरे में आ गया था। तो वहीं लीला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो यही चाहती थी कि अगर वेद उनके घर आए तो वो उसे बिना कोई चोट पहुंचाए जाने ना दे। लीला ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और वापस कमरे में आ गई थी। तो वहीं वेद के अचानक लड़खड़ाने पर वंश घबरा गया था। वेद के हाथ कांप रहे थे और उससे गाड़ी का दरवाज़ा तक खोला नहीं जा रहा था। भाई, आपको क्या हुआ है? खाने में तो कुछ नहीं था, फिर आपकी तबीयत खराब कैसे हो सकती है? वंश ने हड़बड़ाकर पूछा। वेद की ऐसी हालत उसके सामने पहली बार नहीं हुई थी। जब भी उसका शुगर लेवल स्पाइक होता था तब उसकी हालत कुछ ऐसे ही हो जाती थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो अभी, वेद ने हाँफती आवाज़ में कहा। वंश ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वेद को गाड़ी में बैठने में मदद की। वेद की बिगड़ती हालत देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। भाई, हॉस्पिटल? वंश बोलते हुए रुका और वेद की तरफ हैरानी से देखने लगा, क्योंकि वेद ने गाड़ी के ड्रॉर से कुछ दवाइयाँ निकाली और जल्दी से उन्हें लेने लगा था। वेद अपने पास गाड़ी में अपनी ज़रूरी दवाइयाँ रखता था, लेकिन ये मेडिसिन्स वो थीं जो इमरजेंसी सिचुएशन में ली जाती हैं। वेद पहले से ही तैयारी करके आया था, ये देखकर वंश चौंक गया था। कुछ भी पूछने से पहले वो वेद के नॉर्मल होने का इंतजार कर रहा था, और जब वेद की हालत सुधरने लगी तब उसने गाड़ी स्टार्ट की। वंश को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। एक लंबे इंतजार के बाद उसने गहरी सांस लेकर कहा, आपने मेडिसिन पहले ही अपने पास रखी थी? इसका मतलब आपको पता था कि ये लोग ऐसी हरकत जरूर करेंगे? भाई, उसके बावजूद आपने उनके यहाँ कुछ भी क्यों खाया या पिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नव्यांशी और अरमान की शादी में कोई प्रॉब्लम आए। शादी हो जाने के बाद हमें राजावत फैमिली से कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अरमान अलग रहता है, वेद ने शांत लहजे में कहा। रिश्ता जुड़ने जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनकी घटिया हरकतों को सहते रहेंगे। नव्यांशी को पता चला तो वो खुद भी चुप नहीं रहने वाली हैं। वंश दांत पीसते हुए बोला, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल चलो, वेद ने सख्त आवाज में कहा। वेद की मर्जी के खिलाफ जाकर वंश वैसे भी कुछ नहीं करने वाला था। उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ी और झुंझलाहट भरे लहजे में कहा, काश आपके जितना पेशेंस मुझ में भी होता, मैं अभी भी इस शादी के खिलाफ ही हूँ। वेद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हॉस्पिटल आने का इंतजार कर रहा था। साथ ही वेद को इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसने शिवांशा के साथ वक्त बिताने का वादा किया था। पहले ही राजावत हाउस में उन्हें टाइम लग गया था, ऊपर से हॉस्पिटल में अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। कुछ ही देर में वंश वेद को हॉस्पिटल लेकर पहुंच गया था। वेद चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के साथ गया हुआ था, जबकि वंश बाहर अकेला था। वेद ने उसे यही समझाया था कि इस बारे में वो किसी से नहीं कहेगा और नव्यांशी और अरमान की शादी होने तक वो राजावत फैमिली के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। वेद चाहे उसे कितना भी समझा ले, लेकिन वंश इस बात को भूल नहीं सकता था कि किस तरह थोड़ी देर पहले राजावत फैमिली ने जानबूझकर वेद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अगर ये गलती खुद उसके फैमिली मेंबर से भी हो जाती तो वो गुस्सा हो जाता था, जबकि यहाँ तो बात बाहर वाले लोगों की थी। इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा, आप पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन अगर गलती से भी आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते आप अच्छे से जानते हैं। भाई आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हमने आपको माँ और पापा दोनों की जगह दी है, कोई आपको चोट पहुँचाए और हम देखते रहें, ये तो हो नहीं सकता, वंश ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा। वो जानता था इस मामले में कौन उसकी मदद कर सकता है। वंश ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत प्रतीक को कॉल किया। प्रतीक वेद के लिए काम करता था और ऐसा बहुत कम मौकों पर हुआ था जब वंश ने उसे कॉल किया हो। प्रतीक खुद अचानक इतनी रात को उसका कॉल देखकर हैरान था। उसने कॉल रिसीव किया और गंभीर आवाज में कहा, सब ठीक है ना वंश भाई, आपने मुझे कॉल किया है?
कुछ ठीक नहीं है प्रतीक, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वंश गहरी सांस लेते हुए बोला। आपने ये बताने के लिए तो मुझे कॉल नहीं किया होगा कि आपको गुस्सा आया है, आपके गुस्से की वजह क्या है? प्रतीक ने पूछा। राजावत फैमिली अब अपनी हद पार कर रही है, नव्यांशी के रिश्ते के चलते भाइयों ने अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। अगर अब हमने इग्नोर किया तो उन्हें दूसरा मौका मिल जाएगा भाई को दोबारा चोट पहुंचाने का, वंश ने जवाब दिया। हालांकि वंश ने खुलकर कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी बातों से इतना साफ था कि राजावत फैमिली की वजह से वेद को कुछ हुआ है। प्रतीक जल्दी से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और हड़बड़ा कर बोला, क्या हुआ है भाई को, वो ठीक है ना? हम हॉस्पिटल में हैं और आई होप कि सब ठीक ही हो, वंश ने धीमी आवाज में कहा, और फिर राजावत फैमिली में जो हुआ था वो सब प्रतीक को बता दिया था। पूरी बात सुनने के बाद वंश की तरह प्रतीक भी गुस्से में था। वो दांत भींचते हुए बोला, उन जैसे घटिया लोगों से और उम्मीद क्या की जा सकती है? समझ नहीं आता कि नव्यांशी को कोई और लड़का नहीं मिला था क्या? एग्जैक्टली, यही मैं कहना चाहता हूँ, पर मेरी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आई अग्री कि अरमान अच्छा लड़का है और मैंने उसके बारे में पता भी लगाया था, पर उसके अंदर सबसे बड़ी बुराई ये है कि उसका सरनेम राजावत है और वो एक निहायती घटिया परिवार से बिलोंग करता है। खैर, मुझे अरमान में कमियां नहीं ढूंढनी है, अगर मैं ढूंढ भी लूंगा तब भी नव्यांशी मेरी नहीं सुनेगी, मुझे बस बदला लेना है। राजावत फैमिली की कमजोरी के बारे में पता लगाओ, वंश ने कहा। उसने अपने कॉल करने का कारण बता दिया था। आज तक वेद ने भी कभी राजावत फैमिली की कमजोरी या गहराई में जाकर उनकी हिस्ट्री निकालने के लिए नहीं कहा था। वो एक ही शहर से थे। एक वक्त ऐसा था जब तेजिंदर राजावत की कंपनी में ज्यादातर शेयर भरत सिंह चौहान के थे। भरत की मौत के बाद वेद ने उनसे जुड़े पुराने किसी भी इंसान से रिश्ता नहीं रखा था। ऊपर से अंकुश की हरकतें उसे कभी भी पसंद नहीं थीं। वंश ने आज तक उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज तेजिंदर और लीला ने जो हरकत की थी उसके बाद वंश शांत नहीं रहने वाला था। प्रतीक ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया था। वहीं एक घंटे बाद वेद डॉक्टर के पास से बाहर आ गया था। उसके जरूरी चेकअप हो चुके थे और रिपोर्ट आने में टाइम लगना था। वंश वेद को लेकर घर चला गया था तो वहीं राजावत हाउस में तेजिंदर और लीला आपस में आज के डिनर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तेजिंदर ने अपना खेल खेल दिया था, उसने ना सिर्फ वेद को चोट पहुंचाई बल्कि इससे उसे काफी कुछ अंदाजा भी हो गया था। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला लीला, वेद के लिए उसके भाई बहन किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा मायने रखते हैं, और आज उसके साथ खुलेआम ये करने के बावजूद वो चुप है। ना सिर्फ वो चुप है, उसने अपने छोटे भाई का भी मुंह बंद कर दिया है। इसका मतलब वेद के लिए खुद से ज्यादा नव्यांशी मायने रखती है। एक बार नव्यांशी को इस घर की बहू बनने दो, फिर उसके जरिए मैंने वेद सिंह चौहान को बर्बाद नहीं कर दिया तो देखना, उसने मेरे अंकुश के साथ जो भी किया है उससे हर एक चीज का बदला लूंगा मैं, तेजिंदर ने सख्त आवाज में कहा। बिल्कुल लेंगे और साथ मिलकर लेंगे। आज जब आपने मुझे रोका तो एक पल के लिए मुझे लगा कि आप अपने बेटे के साथ हुए जुल्म को भूल गए हैं। आज आपने साबित कर दिया कि आपके दिल में भी उतना ही गुस्सा है जितना मेरे दिल में, और मुझे सिर्फ उस वेद सिंह चौहान से बदला नहीं लेना है, मुझे शिवांशा को दोबारा अपने घर की नौकरानी बनाना है, लीला ने कांपती आवाज में कहा। वो दिन जल्द ही आएगा, बस कुछ भी करके नव्यांशी के साथ अपना रिश्ता अच्छा करो, वही लड़की अपने घर को बर्बाद करेगी, तेजिंदर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वो नव्यांशी को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके मन में यही चल रहा था कि जिस तरह उन्होंने वेद को जल्दी सगाई के लिए फोर्स किया था, वैसे शादी करने के लिए भी कर ही देंगे। एक बार नव्यांशी राजावत खानदान की बहू बन जाएगी, उसके बाद उसकी खुशियों के आगे वेद मजबूर हो जाएगा।